अरुण दिल्ली शहर के पहले 10 रईसों में गिने जाने वाले सेठ उत्तम प्रकाश का सबसे छोटा बेटा था। चांदी के पालने में पला, चांदी की चम्मच से ही पहला पहला अन्न का दाना उसके मुंह में डाला गया। दादी का दुलारा था, माँ की आंख का तारा था, माँ थी सब ओर से घिरी हुई। नौकर चाकरों की भीड़ का नियंत्रण, घर में आने वाले हर मेहमान की सेवा का ध्यान और उस पर 5 बेटे और 1 बेटी का शोर शराबा, सबकी उम्र में 1.5 साल 2 साल का अंतर था। अरुण यदि 6 महीने का था तो सबसे बड़ा बेटा अशोक था 12 वर्ष का। ऐसी फौज जिसका जनरल हो 12 वर्ष का और जिसका छोटा सिपाही हो 6 महीने का, जब कहीं किसी भी जगह धावा बोलती हो तो सोच सकते हैं कि कितना कुछ बचा रह सकता है वहां। लेकिन इस फौज को कोई भी अनुशासन नहीं सिखा पाया, क्योंकि उनके सिर पर वरद हस्त था दादी माँ का, और दादी माँ की कड़क आवाज सुनकर घर में एकदम सन्नाटा छा जाता था। पर बच्चों की आवाजें दादी माँ के कानों में शहद घोलती थी। लेकिन जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को बांटनी थी बच्चों की देखभाल की। निश्चय हुआ कि किसी पढ़ी लिखी औरत को रखा जाए, लेकिन शर्त थी कि वह अच्छे घराने की हो, पढ़ी लिखी हो। तलाश शुरू हुई और जल्दी ही किसी ने सुझा दिया नाम चांदनी चौक में रह रही राम प्यारी का। राम प्यारी विधवा हो गई थी, साथ रहती थी उसकी 16 वर्ष की बेटी। एक कमरे का घर, पति जायदाद के नाम पर फूटी कौड़ी भी छोड़कर नहीं गया था। कौड़ियां खेलते खेलते उसने सब कुछ कौड़ी के दाम ही बेच दिया था मरने से पहले। मां बेटी को खाने के लाले पड़ रहे थे। ऐसे में एक खानदानी रईस परिवार के बीच रहने का अवसर मिला। राम प्यारी को नौकरी जच गई, वहीं रहने को जगह मिल जाएगी, बेटी के लिए भी सुरक्षित जगह लगी। मां बेटी पहुंच गई सेठ उत्तम प्रकाश की हवेली में। सेठ जी को तो पता भी नहीं था कि नौकरों की गिनती में 1 नहीं 2 की बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि दादी माँ ने जब राम प्यारी के साथ उसकी बेटी चांदनी को देखा तो उसे उसी समय बच्चों की बड़ी दीदी का रुतबा दे दिया। चांदनी तो उन बच्चों के सामने परी सी दिखती थी। उत्तम प्रकाश के बच्चों ने रंग और रूप अपनी माँ से पाया था, जो कि घूंघट में रहने के काबिल ही था। लेकिन खानदानी परंपरा, खानदान का रुतबा ही देखा जाता था उस समय, और ऐसे में रूप रंग के आगे दुल्हे की नहीं चलती थी। चांदनी की खूबसूरती के चर्चे पूरी हवेली में थे। उत्तम प्रकाश जो हर शाम कहीं किसी रंगीन महफिल में बिताकर रात लौटते थे, इस खबर से अछूते ना रह सके। बच्चे 6 हो गए थे तो क्या, उम्र तो अभी 30 पार हुई थी, असली जवानी तो इसी उम्र में चढ़ती है। इतनी कहानी सुनाई अरुण ने, चेहरे पर उसके नफरत के भाव आ चुके थे। पिता से बहुत नफरत करता था वह। इतना कह चुकने के बाद अरुण ने अपने पिता उत्तम प्रकाश को उत्तम प्रकाश कहना शुरू कर दिया। अमित को यह संबोधन अच्छा नहीं लगा, टोक दिया उसने अरुण को, ऐसा ना कहिए, आखिर वह आपके पिता हैं। लेकिन अरुण के मन में तो मन भर जहर भरा था। बोला, क्या कहते हो तुम, ना कहूं, उत्तम को उत्तम कहूं, उत्तम शब्द का अपमान होगा भाई। उत्तम तो रखा था दादी ने अपने लाडले का नाम, उत्तम ही था पहले। लेकिन जब तक राम प्यारी और चांदनी, ये दोनों रंडियां हमारे घर नहीं आई थी, इन दोनों के आने पर उत्तम तो कुत्तम बन गया। दोनों की दोनों, अमित के मुंह से निकला। अरे उत्तम फिर भी उत्तम रह जाता, यदि वह सिर्फ राम प्यारी को अपनी अय्याशी में एक और मोहरे की तरह इस्तेमाल करता और मसल कर फेंक देता। ऐसा तो वह रोज करता था। उसने राम प्यारी को पहले भ्रष्ट किया, फिर उसको जायदाद का लालच देकर उसकी बेटी को उसी के इशारे से अपना हम बिस्तर बनाया, मेरी मां से रानी का खिताब छीन लिया, घर की तिजोरी की चाबियां कब दादी मां से छीन कर चांदनी की साड़ी में लटक गई, कानों ही कानों किसी को खबर न लगी, मेरी मां के कमरे में जबरदस्ती अपने एक वफादार कुत्ते को भेज दिया जब वह कपड़े बदल रही थी। उसने मां के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मां ने शोर मचाया, पर परिणाम उल्टा हुआ। मां को ही उल्टा कहा कुत्तम ने, पूरे शहर में बदनाम कर दिया। दादी इसी गम में चली गई और मां को घर छोड़ना पड़ा। कुछ दिन तो उसके भाइयों ने सहारा दिया, फिर अकेली छोड़ दिया कानून की लड़ाई लड़ने को। ऐसे में वह क्या करती, छोटी सी बस्ती में किराए का कमरा लेकर रहती रही। अरुण के चेहरे पर तनाव था, दर्द था, लेकिन दर्द इतना अधिक था कि आंसू भी घबराते थे आंखों में उतर आने को। पर आप लोग तो अपने पिता के पास रहे, अमित ने कहा। हां, हमें तो यही कहा गया था कि तुम्हारी मां कुल्टा थी, भाग गई किसी के साथ। बड़े भाई को तो फिर भी कुछ कुछ मालूम था, लेकिन इतना बड़ा तो वह भी नहीं था कि सारी बात समझ सकता। मां से तो हम लगभग 14 वर्ष बाद मिल पाए थे। वह घर छोड़कर जब गई थी तब मैं 3 वर्ष का था, जब दोबारा मिली तो मैं 17 वर्ष का था। मैं तो चांदनी को ही अपनी मां समझता था, मेरे मन में तो मां से पुत्र जैसी भावनाएं नहीं थी। वह तो मुझे थोड़ा बहुत तब पता लगा जब कॉलेज में एक दिन मेरे ही एक साथी ने मुझे यूं ही बात में बात निकलते हुए सरसरी तौर पर जिक्र कर दिया मेरे पिता और मां से संबंधित केस का। उसके पिता मेरी मां के वकील थे। सारी कहानी वह मुझे बताता चला गया, जो उसे अपने माता पिता के बीच हुई बातचीत से मालूम हुई थी। हां, उसे यह मालूम नहीं था कि जिसकी कहानी वह सुना रहा है उनसे मेरा क्या संबंध है। मां का थोड़ा बहुत पक्ष सुनकर मैं सकते में आ गया, रात भर सो न सका। घर में तब मेरा कोई भी भाई नहीं था, सभी के सभी दिल्ली से बाहर नौकरी करते थे। सबसे बड़े 2 तो फौज में थे, 2 यहां अमेरिका में आ गए थे और बहन की भी शादी हो गई थी। और जिन्हें मैं अपना छोटा भाई समझता था वे 2 थे और दोनों के दोनों दून स्कूल के हॉस्टल में रहते थे। सब मंत्रमुग्ध होकर अरुण की कहानी सुन रहे थे। बिल्कुल फिल्मी कहानी थी यह। केवल वीणा अंदर बाहर आ जा रही थी। उसने तो न जाने कितनी बार यह कहानी सुनी होगी, अब तक तो उसे रट गई थी यह। इसीलिए इस कहानी को सुनने के लिए वह आतुर नहीं दिखती थी। अरुण था कि जैसे 40 वर्ष पीछे लौट गया हो। चाय पर चाय पिए जा रहा था और बोलता जा रहा था। रात को मैं ही घर पर अकेला था। कुत्तम और चांदनी कहीं पार्टी में गए थे और राम प्यारी दारू के 3-4 पैग लगाकर अपने कमरे में पड़ी थी। कोई ना कोई नौकर जरूर होता था उसके साथ। कुत्तम की अलमारी में जाकर मैंने कुछ फाइलों को टटोला। मुझे 2-3 फाइलें बड़े काम की लगी। उन्हें उठाकर मैं अपने कमरे में ले आया, रात भर पढ़ता रहा। एक फाइल थी मेरी मां और कुत्तम के केस की, एक फाइल थी मेरी दादी के वसीयत नामे की, जिसमें वह अपनी सारी जायदाद व बैंक बैलेंस हम सब भाइयों के नाम कर गई थी, और एक फाइल में मेरी मां के लिखे कुछ पत्र थे जिन्हें कुत्तम ने सहेज के रख छोड़ा था, शायद अपने प्रति मेरे विश्वास को तोड़ने के लिए। रात भर मैं सो ना सका। कुछ पल रुक कर वह बोला, डर नाम की चीज मुझे जन्म से नहीं मिली थी, लेकिन यह निडरता इसीलिए थी क्योंकि मैं स्वयं को एक कवचधारी मानता था, अमीर बाप का बेटा जो हरदम नौकरों के साए में हो, एक चौकीदार जिसके साथ हो और पैसों की एक मोटी गड्डी जिसके पास रहती हो। एक बात यहां बता दूं, चांदनी मुझे प्यार करती थी, मुझे लाड करती थी, मैं जो मांगता था देती थी। अब लगता है वह मुझे कमजोर बनाकर, अपना गुलाम बनाकर रख छोड़ना चाहती थी, ताकि मैं स्वयं कुछ ना कर सकूं, मैं उसके हुक्म का गुलाम रहूं और उसके इशारों पर नाचता रहूं। चाय का एक लंबा घूंट भरकर वह फिर बोलने लगा। उसी निडरता से मैं सुबह नाश्ते की टेबल पर वह तीनों फाइलें लेकर पहुंच गया। आज तक कुत्तम ने मेरा ऐसा रूप नहीं देखा था। यह कैसी फाइलें हैं बाबूजी? मैं कुत्तम को बाबूजी कहता था। मेरे हाथ में फाइलें देखकर कुत्तम ने सहजता से कहा, यह तुम्हें कहां मिली? काम की चीजें हैं बेटा, किसी केस से संबंधित होंगी, जहां पड़ी थी वहीं रख दो। लेकिन ये तो हमारे घर की फाइलें हैं। चौंक पड़ा एकदम कुत्तम, उठकर आगे बढ़कर एकदम मेरे हाथ से लेकर जल्दी-जल्दी पन्ने पलटने लगा। यह तो मेरी अलमारी में पड़ी थी, किसने निकाली? रोष था उसकी आवाज में। मैंने निकाली और सारी पढ़ ली। मैं रात भर नहीं सो सका। मुझे तो पता नहीं था, जिसे मैं मां समझता हूं वह रंडी है, उसकी मां रंडी है, और मेरी मां कहीं भीख मांग रही होगी, न्याय की भीख। शायद उसके आगे मैं कुछ ना बोल पाया। कुत्तम ने दोनों हाथों से मेरे चेहरे पर तड़ातड़ थप्पड़ मारने शुरू कर दिए थे। बस फिर क्या था, मेरी आंखों से पर्दा उठ गया। वह चांदनी मेरे लिए डायन बन गई, वही जो मुझे दुलार करती थी, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहने लगी। कुत्तम का खून था मैं, लेकिन उसने कभी रोका नहीं उसे, और आखिर एक दिन मैं अस्पताल जा पहुंचा। मेरे दूध में शायद कुछ मिला दिया था किसी नौकर ने, लेकिन मुझे बचना था, मैं बच गया। मेरी मां को मालूम पड़ा, वह अस्पताल आई, मेरे पास घंटों बैठी रहती और मेरी सेवा करती रहती। सारी कहानी स्पष्ट हो गई मुझे। मैं उसके बाद कभी भी कुत्तम से नहीं मिला। हां, उसके हर जन्मदिन पर उसे एक पत्र जरूर लिखता हूं, खूब गालियां लिखता हूं, मन की हर भड़ास निकालता हूं, और कुत्तम मुझे कभी जवाब नहीं देता। मां ने मुझे कनाडा भिजवाया ताकि फिर कोई मुझे ना मार सके। मेरे सब भाइयों को मैंने सारी सच्चाई से अवगत करवाया, लेकिन कोई भी अपने बाप के खिलाफ जाने को तैयार नहीं था। हां, अब सभी रोते हैं, क्योंकि कुत्तम ने दादी की सारी जायदाद भी अपने नाम करवाकर बेच दी। दादी का वसीयतनामा कैसे नया बन गया, जिसमें हमें और हमारी मां को ही हरामी करार दिया गया। ऐसे में बोलो, मैं कैसे कुत्तम को उत्तम कहूं, कैसे मैं उससे युद्ध ना करूं? अरुण ने अपनी कहानी पूरी की। कमाल है जीजा जी, आप उत्तम को कुत्तम कहें या और भी कुछ, लेकिन यहां बैठकर उसे गाली निकालकर उससे युद्ध के लिए आतुर आप कुछ भी नहीं कर सकते। युद्ध करना है तो चलिए इंडिया, अमित ने सहानुभूति भरे शब्दों से कहा। इंडिया मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। हर बार तुम लोगों से कहता हूं, किसी वकील से बात करो, उसे मेरा केस बताओ, जो मेरी मां का वकील था उससे मिलो। ना जाने कितनी बार प्रेम से बोला मैं, हर बार यही कहा, अगली छुट्टी पर जरूर पता लगाऊंगा। अब फिर तुम्हें बता रहा हूं, पता लगाकर बताना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अरुण ने अपनी बात अमित पर डाल दी। उसे मालूम था कि वह नहीं आएगा कभी। हमेशा से वह कभी उसे, कभी प्रेम से कानून की लड़ाई की बात करता है, लेकिन उस लड़ाई को लड़ने का दम नहीं उसमें, बोला अमित। पता लगाकर क्या होगा, आपका केस बहुत सरल है दिखने में, लेकिन है बहुत पेचीदा। पैतृक संपत्ति का केस है, जिसे आपका बाप अपनी दूसरी पत्नी की औलाद को दिए जा रहा है। उसके लिए आपको सारे सबूत जुटाने होंगे, सबसे मिलना होगा और उस पर इंतजार करना होगा आपको। 30-40 साल से आप छटपटा रहे हैं और अब आपको सुध आई है जब आप 60 वर्ष के हो चले हैं। कभी सोचा है आपने कि आपके पिता की उम्र अब कितनी होगी? 90 साल से ऊपर वह हैं भी या नहीं, इतना भी आपको नहीं मालूम, और होंगे भी तो पूरे निष्क्रिय। अब तक क्या बचा होगा आपके पूर्वजों का उनके पास, सोचिए जरा। जो चांदनी के बच्चे हैं उनकी उम्र भी 45-50 के लगभग होगी। इतनी चालाक औरत ने क्या छोड़ा होगा आपका पुराना कुछ? सब बदल लिया होगा। आप यहां परदेश में बीन बजा रहे हैं अपने खानदान की, अपनी रियासत की, और वहां उस पेड़ की एक भी टहनी नहीं बची होगी। अमित की आवाज में रोष था। अब किसका रोना है? मैं वकील नहीं हूं, पर फिर भी कह सकता हूं कि यह गुत्थी अब गुत्थी नहीं रही, उस गुत्थी की कब्र मात्र है जिसका अब आप रोना रोते हैं। अब काहे का रोना, अब काहे का तरसना? यह आपके जन्म में तो नहीं हो सकता, यदि कुछ सबूत भी हो तो आपके पास। बस फिर क्या था, अरुण यह सुनकर सन्न हो गया। प्रिया भी चुप हो गई और वीणा की आंखों में आंसू भर आए। अमित ने आज पहली बार किसी ने अरुण के बीते कल को झकझोर दिया है। अरुण को किसी ने नींद से जगाया है। अरुण जो कल में, बीते कल में जीता था, एकाएक उठा और भीतर चला गया। अमित से क्या, वीणा से क्या, शाम घर लौटे बच्चों से भी नहीं बोला। तीसरा दिन सभी का बहुत भारी था। जो कल हुआ उसे अगली सुबह किसी ने भी नहीं दोहराया। अरुण के चेहरे पर चुप्पी थी, वीणा बिल्कुल नॉर्मल थी। अमित व प्रिया भी अरुण को चुप देखकर चुपचाप चोर नजरों से अरुण के चेहरे के भावों को पढ़ने की चेष्टा कर रहे थे। नाश्ते की मेज पर भी कोई बात नहीं हुई। ऐसे शांत वातावरण का अमित आदि नहीं था। चुप्पी उसी ने तोड़ी, लगता है जीजा जी मेरी बात आपको बहुत बुरी लगी। बुरी लगी? ऐसी धारणा क्यों बना ली तुमने? हो सकता है तुम्हारी बात ने मुझे कुछ सोचने पर विवश कर दिया। तुम्हारे आखिर के शब्द मेरे कानों में अभी तक गूंज रहे हैं। वास्तव में बहुत समय बीत गया है, लेकिन कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और क्या कहते हैं, देर आयद दुरुस्त आयद, आज भी मुझे यह मुहावरा याद है। क्या एक कोशिश भी नहीं की जा सकती? अरुण के दिल से बोझ उतरता महसूस हुआ अमित को। शब्दों को सावधानी से चुन चुन कर वह बोला, क्यों नहीं की जा सकती कोशिश? आप एक काम कीजिए, अपने केस से संबंधित जो कुछ भी कागज आपके पास है वह मुझे दे दीजिए। अभी हम 2 दिन और हैं यहाँ, आराम से बैठकर अपने केस के लिए जो भी जरूरी तथ्य हैं उन्हें सिलसिलेवार लिख दीजिए। मैं दिल्ली जाकर अपने किसी वकील मित्र से सलाह करूंगा। इतनी जल्दी तो कुछ नहीं लिखकर दे सकता। हाँ ऐसा करते हैं, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हें सब लिखकर भेज दूंगा, ईमेल कर दूंगा, और जो कुछ कागजात मेरे पास हैं या कुछ चिट्ठियां अमेरिका में मेरे 2 भाइयों के पास हैं वे भी मैं उनसे मंगवाकर तुम्हें भिजवा दूंगा। हाँ इंडिया में तुम्हें मेरे शेष 2 भाइयों से मिलकर बात करनी होगी। अमित की बात सुनकर अरुण फिर से उत्साहित हो चला था। अमित ने सावधानी से उत्तर दिया, देखिए जीजा जी अभी पहला कदम तो उठाइए। जब वकील से बात होगी तब पहले आपको आना होगा और उसके बाद अगर जरूरत होगी तो आपके भाइयों से मिल लेंगे। अभी आप केस संबंधित सभी कागजात तैयार कीजिए। अमित की बात सुनकर अरुण एकाएक खुश हो गया। उम्र 60 हो चली थी, बल्कि उससे भी एक आध वर्ष ज्यादा, और भावनाएं बिल्कुल बच्चों की तरह थी। सपनों की दुनिया में रहा है वह सदैव, सपने लेने की उसे अच्छे लगते रहे हैं। तभी तो हमेशा ऊंची ऊंची आगे की बातें करता है। केस जीत गया तो जायदाद बेचकर देहरादून में एक बड़ी स्टेट लूंगा, चाय का बाग लूंगा। वह तो अमित ने वहीं उसे रोक दिया था कि चाय के बाग अब देहरादून में नहीं रहे, वरना तो वह अमित को चाय के बाग को संभालने के लिए मैनेजर भी ढूंढने को कह देता। इस छोटी सी बात से एक फायदा हो गया, घर का वातावरण नॉर्मल हो गया और अरुण स्वयं ही अमित का अगले दो दिनों का प्रोग्राम बनाने में व्यस्त हो गया। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, हम बड़ी वैन किराए पर लेते हैं, तुम्हें वापसी में टोरंटो होते हुए नियाग्रा फॉल्स तक जाना है, वहां से तुम यूएस बॉर्डर पार करके बस लेकर न्यूयॉर्क जाओगे, हम सभी नियाग्रा फॉल्स तक तुम्हारे साथ चलेंगे, इसी बहाने हमारे बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी, अभी तक उन्होंने भी नियाग्रा फॉल्स नहीं देखा, एक रात हम सभी टोरंटो रुककर सारा शहर भी घूम सकते हैं। यह क्या, अरुण ने तो एकदम बढ़िया प्रोग्राम बना दिया, कहां तो वह 9 लोगों को लेकर डिनर करवाने में कतरा रहा था और कहां वह 800 मील का सफर तय करके सबके साथ पूरी मस्ती लेना चाहता था। आज मन से बहुत प्रसन्न है आप लगता है, वीणा ने कहा, वह तो खुश हो गई थी प्रिया के 2 दिन अधिक साथ का सुनकर। हां मुझे लगा कोई अपना है अब इंडिया में, और आगे बढ़कर उसने अमित को गले लगा लिया। वातावरण भावुक हो गया, सबकी आंखों में आंसू आ गए। अगला दिन बहुत खुशी में बीता और उससे आगे के 2 दिन तो पूरी मस्ती में बीते। पहले सभी टोरंटो घूमे, फिर वहां से नियाग्रा फॉल्स, खूबसूरती ही थी चारों ओर, इतना खूबसूरत शहर, इतना खूबसूरत सफर कभी नहीं करने को मिला था किसी को भी। लुभावने दृश्य, सुंदर मीलों लंबी सड़कें, नीले पानी की झीलें, शहर में गगनचुंबी इमारतें और नियाग्रा फॉल्स का दृश्य जैसे स्वर्ग लोक की कल्पना सा प्रतीत हो रहा था, और उस पर अरुण व वीणा का साथ, बच्चों का साथ। 2 रातें साथ बीती और आखिर बिछुड़ने का समय आ गया। सुबह 9 बजे बस ने चलना था न्यूयॉर्क के लिए। 1 घंटा पहले सभी होटल छोड़कर आ गए थे बस स्टैंड पर, आंसू थे कि थम नहीं रहे थे, बहनें बार बार गले लगती, बच्चे बार बार रोने लगते, अमित व अरुण चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। आखिर 9 बज गए, विदा होने के लिए बस की ओर पहले बच्चे बढ़े। कनाडा मूल के लोग वहां ऐसा दृश्य देखकर भाव विवल थे, 2 बहनों की जुदाई, दोनों रोए जा रही थी, बच्चे भी रो रहे थे और 1-2 बूढ़ी औरतें भी जो साथ सफर करने वाली थी अपने आंसू न रोक पाई। प्यार से वीणा व प्रिया को चुप कराने लगी थी वह, बस चल पड़ी, आंसुओं का प्रवाह न थम पाया। वीणा व अरुण अपने बच्चों के साथ वहीं रह गए और प्रिया व अमित अपने बच्चों के साथ बस में बैठकर आगे की ओर बढ़ गए। ना जाने कब मिलन हो इनका फिर।